ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम तीसरा स्कंद अध्याय 32 श्लोक संख्या 30 से हम चर्चा करेंगे। आज अध्याय का नाम है कर्म बंधन, एंटेंगलमेंट इन फ्रूटिव एक्टिविटीज। एतद्वै श्रद्धया भक्त्या, एतद्वै श्रद्धया भक्त्या योगाभ्यासेन नित्यशः, योग अभ्यासेन नित्यशः। कृपया इसको दोहराइए अनुवाद को। यह पूर्ण ज्ञान उस व्यक्ति को प्राप्त होता है जो पहले से ही श्रद्धा, तन्मयता तथा पूर्ण विरक्ति सहित भक्ति में लगा रहता है और भगवान के विचार में निरंतर निमग्न रहता है। वह भौतिक संगति से निर्लिप्त दूर रहता है। तात्पर्य, इस पूर्ण ज्ञान को योग का अभ्यास करता नास्तिक नहीं जान सकता। केवल ऐसे व्यक्ति जो पूर्ण कृष्ण चेतना में भक्ति के व्यवहारिक कार्यों में लगे रहते हैं, वे पूर्ण समाधि में समाहित हो सकते हैं। वे ही समग्र दृश्य जगत तथा उसके कारण संबंधी वास्तविक तथ्य को देख और समझ सकते हैं। यहां यह स्पष्ट कहा गया है, जिसने पूर्ण श्रद्धा समेत भक्ति विकसित नहीं की है उसके लिए यह समझ पाना असंभव है। समाहित आत्मा तथा समाधि प्रायवाची शब्द हैं। तो भगवान कपिलदेव माता दयावती को कर्म बंधन या फ्रूटिव एक्टिविटी से कैसे बचा जा सकता है उसके बारे में समझा रहे हैं। इस अध्याय का आरंभ ही हुआ था कि कैसे जो गृहमेदी जो होते हैं वो किस तरह से इन कर्म बंधन में या फ्रूटिव एक्टिविटीज में लगे रहते हैं, जो कि बहुत खतरनाक है। जब हम इस मनुष्य जीवन का उद्देश्य समझते हैं और उसकी गंभीरता को समझते हैं, तब हमें ये बात बहुत अच्छे से समझ आती है कि किस तरह से फैमिली लाइफ में या गृहस्थ आश्रम में या गृहस्थ लोग जो परिवार से जुड़े हुए हैं कैसे कर्म बंधन में फंस जाते हैं और जीवन का जो उद्देश्य है उसको पूर्णतः या जो गोल है उसको प्राप्त नहीं कर पाते। फिर कुछ श्लोकों में कपिलदेव भगवान समझाते हैं कि वे ज्यादा से ज्यादा ऊंचे लोकों में चले जाते हैं, जैसे चंद्रमा आदि, वहां पर काफी समय तक वे इंद्रिय तृप्ति प्राप्त करते हैं, लेकिन वापिस उन्हें फिर जब उनके पुण्य कर्म समाप्त हो जाते हैं तो पुनः उन्हें फिर माता के गर्भ में 9 महीने तक रहना पड़ता है, जिसका उल्लेख या जिसके बारे में भगवान कपिलदेव ने पिछले अध्याय में बताया कि किस तरह से जीव जो होता है एक माता के गर्भ में 9 महीने तक उल्टा रहता है और किस स्थिति में रहता है, कितनी पीड़ादायक स्थिति होती है, वो उसको समझाया। सिर्फ यही बात समझाने के लिए कि किस तरह से हमें पूर्णतः कृष्ण भक्ति में लगना है। यह मनुष्य जीवन केवल मात्र आत्म साक्षात्कार के लिए मिला है। आत्म साक्षात्कार का मतलब आत्मा का साक्षात्कार किससे? कृष्ण से, भगवान कृष्ण से। और श्रील प्रभुपाद जी तो जो चैतन्य महाप्रभु जो देने आए थे उसको बार बार अपने तात्पर्य में बताते हैं भगवद्गीता के एक श्लोक में मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्करु। इस श्लोक के तात्पर्य में श्री प्रभुपाद जी बिल्कुल साफ लिखते हैं कि कृष्ण भावना अमृत के जो ये सदस्य हैं उनको केवल 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 ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण के ऊपर ध्यान लगाना है। और यहां तक भी लिख देते हैं कि एक आम आदमी के लिए जो कृष्ण भावना अमृत में शायद नया हो या कभी पहली बार श्रीमद् भागवतम क्लास में बैठेगा तो उसके लिए बड़ा अजीब सा लगेगा ये सुनना कि प्रभुपाद लिखते हैं कि नहीं, हमें श्री राम के ऊपर भी ध्यान नहीं लगाना, भगवान श्री राम के ऊपर भी ध्यान नहीं लगाना, वैकुंठपति नारायण के ऊपर भी ध्यान नहीं लगाना, किसके ऊपर लगाना है? ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण। साफ साफ लिखते हैं। जब मुझे ये सौभाग्य मिला भगवद्गीता पढ़ने का पहली बार तो बड़ा आनंद आया पढ़ के, एकदम से आह क्या बात लिखी है प्रभुपाद जी ने। तो प्रभुपाद जी के तात्पर्यों से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इस श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद जी मतलब एकदम स्पष्ट कर देते हैं कि क्या करना है। कर्म बंधन एक बड़ा सर्टल मतलब बड़ा महीन कहते हैं ना, जैसे सर्टल इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में क्या शब्द होगा एग्जैक्टली सर्टल को, लेकिन बड़ा जैसे सर्टल साइंस होती है। एक तो हो गई भौतिक साइंस या कोई हिंदी भाषी है जो अच्छे से इन शब्दों को बता सके, सूक्ष्म विज्ञान। धन्यवाद प्रभु जी, सूक्ष्म विज्ञान है ये। तो प्रभुपाद जी बिल्कुल सूक्ष्म मतलब ये जो कर्म बंधन है बड़ा सूक्ष्म विज्ञान है। व्यक्ति को कार्य करते हुए पता नहीं चलता कि वो भक्ति कर रहा है कि फ्रूटिव एक्टिविटीज कर रहा है। बहुत इवन अर्जुन भी इस बारे में एक बार से कह देते हैं कि मुझे नहीं समझ आ रहा कि मैं क्या करूं, तो भगवान कहते हैं जो मैं कहता हूं वो करो, बस मैं कह रहा हूं युद्ध करो तो युद्ध करो। अर्जुन के कितने प्रश्न थे पहले भगवद गीता में, ऐसे नहीं ऐसा हो जाएगा, मैं इन सबको मार दूंगा क्या होगा, स्त्रियां दूषित हो जाएंगी, वर्ण संकर हो जाएगा, कितने सारे प्रश्न उसने उठाए अपने बात को रखने के लिए। लेकिन भगवान ने उन्हें कहा तुम मूर्ख की तरह बातें कर रहे हो। तो ऐसे ही हमारी आम जिंदगी में या माफ कीजिएगा जो हम फैमिली लाइफ जीते हैं या तो करें क्या, तो उसी बात को समझाने के लिए भगवान कपिलदेव ये संदेश दे रहे हैं और श्रील प्रभुपाद जी बहुत अच्छे से समझा रहे हैं। इस श्लोक में प्रभुपाद जी ने मुख्यतः तीन बातों को बहुत अच्छे से स्पष्ट कराया जिसको हम समझने का प्रयास करेंगे। एक श्रील प्रभुपाद जी पहले तात्पर्य की पहली लाइन में लिखते हैं कि इस पूर्ण ज्ञान को योग का अभ्यास करता नास्तिक नहीं जान सकता। आम आदमी की तो बात ही छोड़ दीजिए, जो कुछ भी नहीं कर रहा, जो केवल चार कार्यों में लगा हुआ है, आहार निद्रा भय मैथुन, उसकी तो बात ही नहीं कर रहे यहां पर। भागवतम में उसकी बात नहीं होती, भगवदगीता में भी उसकी बात नहीं होती। बात होती है योगियों की, जो कुछ कर रहे हैं, जो जानना चाहते हैं कुछ, जो इस मनुष्य जीवन का गोल समझना चाहते हैं, उद्देश्य समझना चाहते हैं, जिनमें कम से कम इतनी समझ तो आ गई है कि मैं मुझे दुख क्यों दिया जा रहा है, मुझे क्यों जबरदस्ती बूढ़ा बनाया जा रहा है, सच में मैं तो इस मरना नहीं चाहता, फिर मुझे क्यों ये बार बार इस दशा में रखा जाता है कि मुझे इस यहां से निकाला जा रहा है समथिंग, या इसके बाद भी कुछ जीवन है क्या, उन लोगों की बात होती है भगवदगीता और भागवतम में। तो जो इन चार कार्यों में लगे उनके बारे में तो है नहीं। तो इसमें प्रभुपाद जी भी इस बात को क्लियर कर रहे हैं या समझा रहे हैं कि पूर्ण ज्ञान को योग का अभ्यास करता, योग का अभ्यास करता मतलब कुछ जुड़ना चाहता है, नास्तिक नहीं जान सकता। देखिए कितनी हम इस संसार में देखते हैं कि कितने काफी सारे लोग प्रचार कर रहे हैं और खासकर आजकल काफी सारी सोसाइटीज खुली हुई हैं योग के नाम पर। लेकिन अगर कोई ऐसी सोसाइटी या ऐसा माफ कीजिएगा कहना पड़ता है योगी जो कृष्ण के बारे में नहीं समझा रहा, उसको इस भौतिक जगत के बारे में मतलब इस भौतिक जगत का पूर्ण ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। क्लियरली इसमें ये बात भगवान कपिल देव कह रहे हैं, ये जो बात लिखी है ये उसमें मतलब अनुवाद में है, श्लोक के अनुवाद में है कि यह पूर्ण ज्ञान उस व्यक्ति को प्राप्त होता है जो पहले से ही श्रद्धा तन्मयता तथा पूर्ण विरक्ति सहित भक्ति में लगा रहता है और भगवान के विचार में निरंतर निमग्न रहता है। अर्थात कौन नहीं प्राप्त कर सकता? जो ये कार्य नहीं कर रहा, जो कृष्ण भावना में पूरी तरह से नहीं लगा, उसको ये ज्ञान समझ नहीं आएगा। बाकी आपसे प्रार्थना है कि आपके मोबाइल को साइलेंट मोड पे लगा दें या स्विच ऑफ कर दें। धन्यवाद। तो ऐसा व्यक्ति नहीं समझ सकता जो कृष्ण भावना का प्रयास या अभ्यास नहीं कर रहा। अब कोई कह सकता है ऐसे कैसे कह रहे हैं आप, क्या उदाहरण है आपके पास? तो हम उदाहरण श्रीमद् भागवतम के बहुत प्रसिद्ध जो कथाएं हैं, जो प्रसिद्ध चर्चा है, जो प्रैक्टिकल जो करा गया उसमें देखते हैं। जैसे कि आप श्रीमद् भागवतम में दुर्वासा मुनि और अम्बरीश महाराज की कथा सुनते हैं। दुर्वासा मुनि कोई साधारण से योगी नहीं थे, कोई योगा सेंटर नहीं चला रहे थे कोई साधारण सा, बहुत ऊंचे स्तर के योगी थे। और ऐसे योगी थे, अगर उनकी शक्ति पर हम विचार करें, आजकल तो ऐसे योगी मिलना भी मुश्किल है, ऐसे योगी थे जो इसी शरीर के साथ इस ब्रह्मांड में विचरण कर सकते थे। ऐसा योगी है आजकल की स्थिति में कोई, तो इसी शरीर में पृथ्वी छोड़ के किसी और लोक में चला जाए? हमें तो देखने को नहीं मिलता ना सुनने को मिलता है अभी तक। लेकिन दुर्वासा मुनि ऐसे योगी थे जो इसी शरीर सहित, जब उनकी कथा सुनते हैं, जब उनके बारे में हम विचार करते हैं, तो बताते हैं कि वो इसी शरीर से सबसे पहले ब्रह्मा जी के पास गए, जब उनके पीछे सुदर्शन चक्र पड़ा। श्री राधानाथ महाराज जी कहते हैं सुदर्शन चक्र का एक ये बहुत अच्छा कार्य होता है, पहले तो वो उस अपराध के से कारण, जो कारण होता है जैसे राक्षस आया, पहले उसको नष्ट करेगा। आजकल के जैसे अस्त्र नहीं है वो कि पूरी सिटी उड़ा देगा, कुछ नहीं, ऐसे नहीं है। पहले जैसे उस वो जो राक्षस उत्पन्न हुआ पहले उसको खत्म करा, फिर उसका कारण जो होता है उसको मारता है ताकि ये दोबारा से ना हो, इस तरह से बेवकूफी दोबारा से ना हो। मान लीजिए किसी साइंस ने परमाणु, किसी साइंटिस्ट ने परमाणु बम बनाया, तो भगवान का शस्त्र या भगवान का जो चक्र है पहले परमाणु बम को खत्म करेगा, फिर उसके पीछे जाएगा उस साइंटिस्ट के पीछे जिसने उसे बनाया। तो ये है कंप्लीट मतलब साइंस जो होती है जब हम भागवतम में सुनते हैं। तो जब वो उस राक्षस को जब उस शस्त्र अपने भगवान के चक्र ने मारा, तो वो फिर भागा दुर्वासा मुनि के पीछे, मतलब उनका पीछा किया, अब आपको नष्ट करूंगा मैं, क्योंकि आपने एक भक्त का अपराध करा है, एक भक्त को मारने का प्रयास कर रहा है, उसकी हत्या करने का प्रयास करा है आपने, तो इसकी सजा है ये है कि आपको अब ये शरीर छोड़ना पड़ेगा। तो दुर्वासा मुनि उसी शरीर से पहले ब्रह्मा जी के पास गए अर्थात ब्रह्मलोक में गए, फिर शिव जी के पास गए अर्थात शिवलोक में गए, फिर उसके बाद वैकुंठ भी गए। तो इतनी शक्ति थी दुर्वासा मुनि की। मैं ये क्यों बताना चाह रहा हूं इसी बात को कि योग का अभ्यास करता नास्तिक, जिसे कृष्ण की सत्ता पर या कृष्ण सर्वश्रेष्ठ या परम भगवान है, या इंग्लिश में बहुत अच्छे से प्रभुपाद जी लिखते हैं द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड, इसके ऊपर अगर उसे विश्वास नहीं है, क्योंकि अगली लाइन में यह भी लिखा है विश्वास भी नहीं है, तो वो इस पूर्ण ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकता। पूर्ण ज्ञान क्या है? जो भगवान कपिलदेव पिछले श्लोक में बता रहे हैं कि ये सारा संसार सब कुछ भगवान की शक्ति है, भगवान से आ रहे हैं। भगवान इस बात की पुष्टि भगवद गीता में बहुत अच्छे से करते हैं, अहम सर्वस्य परभवो मता सर्वस्य परवर्तना इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विता, कि मेरे से सब कुछ आ रहा है, भगवान कहते हैं मैं ही सब कारणों का कारण हूं। इस बात की पुष्टि और कौन करते हैं? ब्रह्मा जी भी कहते हैं ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम। इवन भगवदगीता में अर्जुन भी इस बात की पुष्टि करते हैं परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परम भगवान, मतलब इस बात की पुष्टि बार बार की गई है। इसी बात को प्रभुपाद जी उसमें समझा रहे हैं, जो बात कपिल देव भगवान बता रहे हैं कि किसको समझ नहीं आएगा, जो कृष्ण भक्ति में नहीं लगा हुआ। योगी है, देखने में योगा कर रहा है, सब कुछ हो रहा है, लगता भी आध्यात्मिक व्यक्ति है, लेकिन उसको भी यह बात समझ नहीं आएगी। इस बात की पुष्टि ये भागवतम में होती है। उसके बाद हम देखते हैं, और एक और कथा है। देखिए, बड़े शक्तिशाली, ये तो दुर्वासा मुनि तो योगी थे। चलिए एक और हम उदाहरण देते हैं। जो व्यक्ति योगा करके, मतलब उसको इतना पता था कि मैं अगर किसी का, मतलब मुझे अगर कुछ प्राप्त भी करना है तो मुझे, मेरे ऊपर कुछ सुपीरियर या कुछ शक्तियां ऐसी हैं जिनसे मैं सहायता लूंगा। भारत में सबको पता होता है कि अगर मैं उनसे प्रार्थना करूंगा तो मुझे वो चीज प्राप्त हो सकती है। और इसका सर्वश्रेष्ठ या टॉप मोस्ट जो व्यक्ति, जो कहते हैं सर्व, मतलब इस भौतिक जगत की जो सबसे शक्तिशाली चीज वो जो व्यक्ति प्राप्त कर सकता है, वो था उसका उदाहरण है हिरण्यकश्यपु। हिरण्यकश्यपु ने ब्रह्मा जी से यहां तक, मतलब ना मरने का हर तरह से पूरी व्यवस्था कर ली थी, है ना, कि मैं ऐसे भी ना मरूं, वैसे भी ना मरूं, बाकी और भौतिक सुविधा के तो कहने ही क्या। ऐसा नहीं था उसके पास भौतिक सुविधा नहीं थी, मतलब पूरे इस पृथ्वी का राजा था ही था वो तो, साथ में उसने देवी देवताओं को भी पराजित कर दिया था। कहा जाता है कि उसके इशारे पर, मतलब अगर वो कहेगा इंद्र को कि अभी बारिश होनी चाहिए तो इंद्र को बारिश करनी पड़ेगी, इतना शक्तिशाली राजा था। इंद्र भी घबराता था उसके, उसकी शक्ति से, वो भी एक तरह का योगी है, और पूरी शक्ति उसने प्राप्त कर लिया। लेकिन वो भी इस बात को नहीं समझ पाया क्या, कि कृष्ण ही सब कारणों के कारण है। ये पृथ्वी, ये सारा जगत केवल उन्हीं के इशारे से चल रहा है, ये हवाएं केवल उन्हीं के इशारे से बह रही हैं, सूर्य केवल उन्हीं के डर से उग रहा है डेली हर रोज। तो अगर व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में योग नहीं कर रहा या भक्ति नहीं कर रहा, तो उसको ये ज्ञान प्राप्त कर पाना पूर्णतः ज्ञान नहीं होगा। उसे कुछ ज्ञान हो सकता है लेकिन पूर्णतः ज्ञान नहीं होगा उसे। उसका उदाहरण हम देखते हैं, इतने शक्तिशाली दुर्वासा मुनि, इतने शक्तिशाली हिरण्यकश्यपु इस बात को नहीं समझ पाए। क्यों? क्योंकि वे योगी तो थे लेकिन कृष्ण भावनामृत या कृष्ण को परम भगवान नहीं मानते थे, या इस बात को समझ नहीं थी उन्हें। अब हम इसमें जो दूसरा बिंदु या दूसरा पॉइंट श्री प्रभुपाद जी समझाते हैं कि जो व्यक्ति इसके बिल्कुल अपोजिट, केवल ऐसे व्यक्ति, तात्पर्य में लिखते हैं, केवल ऐसे व्यक्ति जो पूर्ण कृष्ण चेतना में भक्ति के व्यावहारिक कार्य में लगे रहते हैं, वे पूर्ण समाधि में समाहित हो सकते हैं। मतलब उनकी स्थिति क्या होगी, जो अब क्वेश्चन उठता है, अगर मैं कृष्ण भाव, ये मैं भक्ति करूंगा, मैं या कृष्ण भावना अमृत का जो भी साधन है या साधना है उसको करने का अभ्यास करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, उसमें क्या होगा, समाधि में समाहित हो सकता है। उसको ज्ञान नहीं मिलेगा सिर्फ कि कृष्ण सर्व कारण कारण है, वो समाधि में चला जाता है। मतलब जो, और ऐसी समाधि श्रील प्रभुपाद जी कौन सी समाधि समझा रहे हैं, मन मना भव मत भक्तो, भगवान कहते हैं ना ये करना है। समाधि का अर्थ क्या है, चलिए थोड़ा सा इसको और समझने का प्रयास करेंगे। भगवद गीता में से श्रील प्रभुपाद जी कई जगहों पर यह बात लिखते हैं कि समाधि क्या है। एक तो जब भगवान ने, जब संजय ने बोला कि ये गुड़ाकेश है, अर्जुन का एक नाम गुड़ाकेश है, राइट, ठीक है ना, तो इसके ये श्लोक संख्या भगवद गीता एक श्लोक संख्या 24 में, एवं मुक्तो ऋषिकेशो गुड़ाकेशन भारत सेनरो उपमध्य स्थापित रथोत्तमा। इसके तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं, गुड़ाका का अर्थ है नींद, और जो नींद को जीत लेता है वह गुड़ाकेश है। नींद का अर्थ अज्ञान भी है। अतः अर्जुन ने कृष्ण की मित्रता के कारण नींद, कृष्ण की मित्रता के कारण नींद तथा अज्ञान दोनों पर विजय प्राप्त की थी। कृष्ण के भक्त के रूप में वह कृष्ण को क्षण भर भी नहीं भूलता था या भुला पाया, क्योंकि भक्त का स्वभाव ही ऐसा होता है। जो प्रभुपाद जी उस बात को कह रहे हैं ना, यहां पर लिखे उसी बात की पुष्टि यहां पर कर रहे हैं, क्योंकि भक्त का स्वभाव ही ऐसा होता है, यहां तक कि चलते अथवा सोते हुए भी कृष्ण के नाम रूप गुणों तथा लीलाओं के चिंतन से भक्त कभी मुक्त नहीं रह सकता। अतः कृष्ण का भक्त उनका निरंतर चिंतन करते हुए नींद तथा अज्ञान दोनों को जीत सकता है। इसी को कृष्ण भावनामृत या समाधि कहते हैं। उसके बाद भगवद गीता में ही एक जगह और कि समाधि कैसे प्राप्त होती है, यह है जब व्यवसात्मिका बुद्धि एक करुणंदना, कि भगवान जब कहते हैं कि अर्जुन व्यवसात्मिका बुद्धि करो, केवल मेरे में मन लगाओ, मेरे को मेरा चिंतन करते युद्ध करो, उसके तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं कि श्रद्धा शब्द विश्वास कहे सिद्धिर्ण निश्चय कृष्ण भक्ति कहले सर्व कर्म कृत होए, कि कृष्ण भक्ति करने से सारे कार्य हो जाते हैं, सर्व कर्म कृत। ये चैतन्य चरितामृत में बोला गया है, श्री चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि कृष्ण भक्ति कहले, कृष्ण भक्ति करने से सारे कार्य। ये कर्म बंधन क्या चीज है, सब कुछ होगा, कर्म बंधन भी छूट जाएगा, भक्ति होगी, और कहां पर पहुंच जाएगा व्यक्ति, समाधि की स्थिति में पहुंच जाता है। श्रील प्रभुपाद जी से एक बार बॉम्बे में यह प्रश्न पूछा था, क्योंकि एक बार वो बॉम्बे में, बॉम्बे का मंदिर आप जानते हैं कितनी मुश्किलों से बना, अगर आपने लीलामृत पढ़ा होगा तो। प्रभुपाद जी की बहुत, मतलब श्रील राधानाथ महाराज बताते हैं एक प्रभुपाद जी के तिरुभाव महोत्सव के उसमें ग्लोरिफिकेशन में करते हुए बताते हैं कि जब श्रील प्रभुपाद जी पहली बार बॉम्बे गए थे तो जब वो डालमिया जी की माता जी थी ना जिन्होंने वो दिया था, ये माधवराज सिंधिया, माफ कीजिएगा, माधवराज सिंधिया जी की माता जी के पास जब जाते थे मिलने के लिए, क्योंकि उन्हें दान चाहिए था भागवतम छुपाने के लिए, तो जब वो जुहू से निकलते थे तो उसी वक्त उन्होंने मन बना लिया था कि मैं यहां पर एक मंदिर बनवाऊंगा। उसी वक्त से वो मतलब सोचते थे कि बॉम्बे में एक बहुत बड़ा मंदिर होना चाहिए, और उन्हें वो जगह भी बहुत पसंद आई थी। उस वक्त कुछ भी नहीं था, जंगल था, लेकिन प्रभुपाद जी उसी वक्त से चिंतन करते थे। तो प्रभुपाद जी का मतलब विदेश जाने से पहले से चिंतन चल रहा था कि बॉम्बे में यहां मंदिर होना चाहिए, बड़ा मंदिर होना चाहिए, मुख्य मतलब शहर है, मेन सिटी है भारत की, अगर वहां के लोगों को प्रचार हो जाएगा तो पूरे भारत में आसानी से प्रचार होगा। तो वो जुहू मंदिर पे बनने में हमें कितनी परेशानियां आई हम सब जानते हैं, और प्रभुपाद जी एक बार बैठे हुए थे और एक आई थिंक डॉक्टर था कोई जो उनके सामने बैठा था, उनसे दर्शन करने आया हुआ था, और प्रभुपाद जी अपने शिष्यों से कह रहे थे, मंदिर के बारे में पूछ रहे थे कि क्या हो रहा है ये, मतलब सब लोग कह रहे थे कि हमें सीमेंट वाला चीट कर रहा है, हमें रेत वाला वो ऐसे बोल रहा है, मतलब ऐसे बातें चल रही थी, और कृष्ण कथा तो हो ही नहीं थी, मतलब उसको ये लग रहा था कृष्ण कथा नहीं हो रही जो व्यक्ति नया बैठा हुआ है। तो उसने फिर जब प्रभुपाद जी थोड़े से उनसे टाइम मिला, समय मिला, तो उनसे पूछा, हाँ बताइए, कहते महाराज मतलब स्वामी जी आप तो कहते हैं, हमने तो सुना है कि जो व्यक्ति हमेशा कृष्ण का चिंतन करता है या कृष्ण के बारे में बात करता है वो शुद्ध भक्त होता है और ऐसा है, लेकिन मैं तो आपको देख रहा हूं आपने तो पिछले आधे घंटे से आप सिर्फ सीमेंट और लोहा और इसकी बातें कर रही है, क्या बात है। तो प्रभुपाद जी ने कहा आप मेरे पीछे स्टेथोस्कोप लगाइए। तो उसने स्टेथोस्कोप लगाया तो उसने हरे कृष्ण महामंत्र सुना। इट वॉज 24 मतलब 24 घंटे वो प्रभुपाद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे इसका चिंतन चलता रहता था। तो गुड़ा केस जो हमने अभी सुना जो अर्जुन थे, ऐसे ही अर्जुन एक बार भगवान कृष्ण द्वारका में थे, सुना है हमने ये मतलब साधुओं से कि जब भगवान कृष्ण रात में कई बार मतलब बोलने लग जाते थे, अर्जुन के बारे में सोचने लगते थे, हे अर्जुन, अर्जुन से मतलब इस तरह से बोलने लग जाते, अर्जुन के बारे में सोचते थे, अर्जुन कहते थे। तो द्वारका की रानी ने कहा कि ये अर्जुन में इतना क्या आप में विशेष है कि आप उनके बारे में कई बार रात में बोलते हैं, हमें सुनने को मिलता है। तो उन्होंने कहा वो मेरा प्रिय सखा है और मेरा मतलब बताया उनके बारे में, उसका गुणगान करा, क्योंकि भगवान को अपने भक्तों का गुणगान करने में बड़ा आनंद आता है। भगवान और भक्त में यह कॉम्पिटिशन चलता है, जो भक्त होता है वो भगवान का गुणगान करने में लगा रहता है, और जो भगवान होते हैं वो भक्त का जो ऐश्वर्य और उसका नाम है जो उसको सब देने में लगे रहते हैं। भक्त कहते हैं नहीं चाहिए, भगवान कहते नहीं लो। तो ये उनमें कॉम्पिटिशन चलता रहता है। जैसे ब्रज में या वृंदावन में भगवान में और ब्रजवासी में कॉम्पिटिशन रहता है। ब्रजवासी कहते हैं हम आपको प्रसन्न करेंगे, भगवान कहते हैं नहीं मैं आपको प्रसन्न करूंगा। इस तरह से कॉम्पिटिशन रहता है। तो वही भाव रहता है जब भगवान के शुद्ध भक्त इस पृथ्वी पर आते हैं, उसी चेतना को लेके यहां पर प्रचार करते हैं, दिखाना चाहते हैं कि जीव का जो असली जो घर है वो ये है, जहां ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि ये तो खैर छोटी बात है, मतलब किसी और कोई चिंता ही नहीं होती, केवल आनंद ही आनंद और कुछ नहीं। तो मैं बता रहा था कि द्वारका की जब पत्नियां भगवान कृष्ण द्वारा एक बार अर्जुन जब आए द्वारका में रहने के लिए तो उनको लेके गए उनके कमरे में रात को, तो वहां भी वो देख रहे हैं कि कृष्ण इवन सो भी रहे हैं, वो कृष्ण 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 बोल रहे हैं। और एक बार हमारा एक कैंप लगता है हमारा आई कैंप बरसाना में हर साल इस राधानाथ महाराज के सानिध्य में कि ब्रजवासियों की थोड़ी सेवा हो जाए। तो एक मैंने सुना है ये वहां के ही किसी बहुत बड़े मतलब अच्छे भक्त से काफी, तो उन्होंने कहा कि ये ब्रजवासियों में ऐसी क्या मतलब भगवान को ब्रजवासी इतने पसंद क्यों है, ये ब्रजवासियों का गुणगान क्यों करते हैं प्रभुपाद जी बार बार। तो महाराज राधानाथ महाराज ने कहा चलिए देखते हैं। तो एक बार रात को जब उनके ब्रजवासियों का बेचारे साधारण सिंपल से ब्रजवासी जब अपने कमरों में लेटे हुए थे आंख के ऑपरेशन के बाद, तो उनको राधानाथ महाराज कहा चलिए देखते हैं। तो जब उनके कमरों में गए देखने के लिए, जब एक साथ काफी सारे ब्रजवासी सोए होते हैं बेचारे, या उनका इलाज करके बेड पे डाला होता है उन्हें जहॉल जैसे भी, तो जब वो गए तो उनको राधे राधे राधे, मतलब वो सो रहे हैं अभी रात के लगभग 12 बज रहे हैं और वो देखने गए तो वो सुन रहे हैं राधे राधे राधे, उनके मुख से अपने आप निकल रहा है। तो ये चिंतन इस अवस्था में व्यक्ति आ सकता है अगर वो कृष्ण भावना अमृत का, कृष्ण भावना की साधना का बहुत मतलब इसमें लिखा भी है कि पूर्ण कृष्ण चेतना में भक्ति के व्यवहारिक कार्यों में लगे रहता है। ये इसमें बहुत महत्वपूर्ण बात लिखी है प्रभुपाद जी ने कि व्यवहारिक कार्यों में, व्यवहारिक कार्य क्या है, माला बना रहे हैं भगवान के लिए, ये व्यवहारिक है। कई बार व्यक्ति समझता है कि भक्ति का मतलब है कि मैं किसी एकांत में चला जाऊं और जप करूं या उस तरह करूं, नहीं, भक्ति का व्यवहारिक कार्य प्रैक्टिकल डिवोशनल सर्विस प्रभुपाद इंग्लिश में लिखते हैं, प्रैक्टिकल एक्टिविटीज ऑफ प्योर डिवोशनल सर्विस इन फुल कृष्ण कॉन्शियसनेस, कि समझते हुए कि मैं कृष्ण भगवान की, ये मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मेरी इसमें पवित्रता मतलब प्यूरिफिकेशन होगा और भगवान गुरु और गौरांग इससे प्रसन्न होंगे। प्रैक्टिकल कार्यों में माला बना रहे हैं, भगवान का प्रसाद की सेवा चल रही है, ये समझते हुए कि ये जो बैठे हुए हैं कृष्ण के रिप्रेजेंटेटिव हैं, इस बात को समझते हुए प्रयास करना पड़ता है, अभ्यास करना पड़ता है। सुबह जप कर रहे हैं हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हो सकता है कि मुझे अभी नींद आ रही है जप करते हुए, आती भी है, हो सकता है कि मेरा मन इधर उधर जा रहा है जप करते हुए, लेकिन फिर भी करना है, इसे कहते हैं साधना। जानते हुए कि ये मेरे गुरु का आदेश है कि मुझे 16 माला कम से कम ध्यानपूर्वक जप करना है। कोई भी सेवा करते हुए, चाहे आप कोई भी सेवा कर रहे हैं, बहुत सारी सेवाएं आपको पता है, जब अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना संघ के आप हम मंदिरों में सेवा में लगते हो, कितनी अनगिनत सेवाएं हैं, अकाउंट्स की में सेवा कर रहा है कोई, कोई गोविंदा में सेवा कर रहा है, कोई गुरुकुल में सेवा कर रहा है, सेवा की कमी नहीं है, बहुत सेवाएं हैं, करने वालों की कमी है। तो जब ऐसी व्यवहारिक सेवाओं को व्यक्ति पूर्ण कृष्ण चेतना में करता है तो वह समाधि की अवस्था तक पहुंच सकता है। ये केवल सिर्फ कर्म बंधन से नहीं छूटेगा, उससे भी ऊपर की अवस्था से, मतलब 24 आवर वो भगवान के बारे में, कृष्ण के बारे में सोच सकता है, उनके बारे में चिंतन कर सकता है। किसी भी भक्त से मिल रहे तो जानते हुए कि ये कृष्ण का भगवान की सेवा में लगा हुआ है, तो अगर हम इस बात को बार बार सोचते हुए करेंगे तो जो भक्ति का सबसे बड़ा जो बाध, जो कहते हैं रुकावट है, जो मतलब कृष्ण भक्ति में हमें रोकता है, वो है वैष्णव अपराध। वैष्णव अपराध से भी हम बहुत आसानी से बच सकते हैं। अम्बरीश महाराज देखिए इतने बड़े राजा थे, दुर्वासा मुनि ने उन्हें श्राप दे दिया, वो चाहते तो वापस बोल सकते थे, बड़े राजा है, कुछ नहीं बोले, चुप। क्यों? क्योंकि कृष्ण भावनामृत की वो अभ्यास में, वो तो शुद्ध भक्त हैं, उसमें है। वो अपने उदाहरण से दिखा रहे हैं कि कैसे त्रिणादपि सुनिचेन तरो रवि सही सुना अमानिना मान देन कीर्तनीय सदा हरि। कीर्तनीय सदा हरि कब हो सकती है? जब ये क्वालिटीज, ये गुण हम अपने अंदर डेवलप करेंगे, या हरे कृष्ण, जिसकी शुरुआत सबसे होती है महामंत्र के जप करने से। बहुत ध्यान पूर्वक जब हम अपने 16 माला का ठीक से करेंगे तब ये जो गुण है अपने आप धीरे धीरे हम देखेंगे। श्रीमद् भागवतम में कहा है कि देवताओं के गुण व्यक्ति में आ जाते हैं। उसकी शुरुआत कहां से होती है? सबसे पहले बहुत ध्यानपूर्वक 16 माला करना। प्रहलाद महाराज देखिए कितनी दया उनमें है। व्यक्ति ने उसको मारने का प्रयास करा, उनके स्वयं के पिता, जो हमने भी कथाएं ली है हिरण्यकश्यपु और दुर्वासा मुनि। पहले हमने हिरण्यकश्यपु और दुर्वासा मुनि के बारे में सुना, लेकिन अब देखिए उनके अपोजिट अम्बरीश महाराज और प्रहलाद महाराज। अम्बरीश महाराज हाथ जोड़ के खड़े हो गए दुर्वासा मुनि के, क्योंकि वो जानते हैं कि ये भी योगी हैं। तो हमें जो कृष्ण भावनामृत का अभ्यास कर रहे हैं हम व्यक्ति, मतलब हम तो कहते हैं कि हम एक चींटी का भी सम्मान करते हैं, तो फिर कोई और योगी या और तरह के जो साधु आते हैं तो उनका तो कहना ही क्या। मैं बात इसलिए कह रहा हूं, कई बार हम व्यक्ति सम्मान नहीं करते ठीक से। और जैसे मान लीजिए कोई और संप्रदाय के व्यक्ति आते हैं, मान लीजिए कोई मायावादी भी आता है, मान लीजिए कोई ऐसे साधु आते हैं, कम से कम सम्मान तो करना ही है। अपमान करने का मतलब बिल्कुल ये तो निचला स्तर हो गया ना फिर, तो मतलब इसका मतलब अभी कृष्ण भावनामृत के हम ठीक से समझे ही नहीं। और फिर वैष्णव की तो बात ही क्या, बहुत प्रेम से मिलना है एक दूसरे से, मतलब जेन्युइन अच्छे से, बिल्कुल मतलब ये हृदय में रखते हुए कि हो मैंने इस मतलब वैष्णव की सेवा करनी है, इस वैष्णव का कम से कम अपमान तो नहीं करना। और प्रहलाद महाराज ने दिखाया कि हिरण्यकश्यप उसको मारना चाहता है, बताइए, एक बार नहीं, दो बार नहीं, कई बार कोशिश करी, उसके बावजूद प्रहलाद महाराज से जब नरसिंह भगवान ने पूछा आपको क्या, आपकी क्या इच्छा है, तो उनकी इच्छा क्या थी कि मेरे पिता, इनका उद्धार कैसे होगा। ये होता वैष्णव, ये क्वालिटीज, ये जो गुण अपने आप कैसे समाधि की अवस्था में व्यक्ति जब आ सकता है, जब वो इन पूर्ण कृष्ण भावनामृत में रहते हुए अभ्यास करता है। ये मत सोचे कि शुद्ध भक्त बन जाएंगे तब ऐसा गुण होगा, नहीं, शुरू से ही। अभी हम मायापुर में थे तो वहां पर भी चौथा स्कंद चल रहा है यही, तो वहां इस बात को बहुत अच्छे से समझाया कि नारद मुनि प्राचीन वर्ग को समझा रहे हैं कि ये मत, क्योंकि जो राजा है प्राचीन वर्ग जो भी है, कि वो कह रहा है मतलब उसके पास सारी फैसिलिटीज है, बड़ा अच्छा राजा है, उसकी पत्नी है, बच्चे हैं, उसके पास सारी वो है, तो वो उसके मन में ये हो रहा है कि मैं भक्ति अभी नहीं, कुछ समय बात करूंगा। तो नारद मुनि उन्हें समझाते नहीं, समय जो है, समय का उदाहरण देते हुए नारद मुनि समझाते हैं कि आपके आगे जैसे शेर के आगे, माफ कीजिएगा, किसी हिरण के आगे शेर पीछे खड़ा हुआ है, कभी भी उसको खा सकता है, और आगे शिकारी है जो कभी भी उसको मार सकता है। तो इसी तरह से उनका उदाहरण देते हुए नारद मुनि समझा रहे हैं कि समय और मृत्यु, समय तो हमें हर रोज हर क्षण हमारा शरीर खत्म कर ही रहा है, हर क्षण हम बूढ़े हो रहे हैं, तो जो शिकारी तैयार है और जो मृत्यु वो जो शेर है वो किसी भी समय झपट्टा मार सकता है। तो अभी से तुरंत शुद्ध भक्ति के अभ्यास में लग जाओ, समझा रहे हैं वो। तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि नहीं 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 अभी तो मैं ऐसा है, अभी तो मेरे पास फैमिली है, या अभी तो मेरे पास ये सेवाएं हैं, अभी तो मेरे पास वो सेवा है मेरा, ऐसे नहीं। किसी भी व्यवहारिक सेवा करते हुए शुद्ध भक्ति में लगा जा सकता है। ऐसा नहीं है कि कोई लेक्चर दे रहा वही शुद्ध भक्ति में को प्राप्त करेगा। लेक्चर देना राधानाथ महाराज कहते हैं बहुत आसान है, वेरी इजी। उसको व्यवहार में लाना जो हम बोल रहे हैं वो थोड़ा सा उसकी साधना करनी पड़ती है। और ऐसे भक्तों को मैं यहां जो मेरे सामने बैठे हुए कई ऐसे भक्त हैं जो भक्ति में बहुत आगे हैं, लेकिन वो यहां के बैठ के हम्बल हैं इतने, मतलब वो कहते नहीं हमें सुनना ज्यादा अच्छा लगता है बोलने से। लेकिन मैं बेशरम हूं, मुझे जब भी सेवा दी जाती है मैं कहता नहीं, मैं बोल देता हूं, कोई बात नहीं। तो शुद्ध भक्ति कहीं से शुरू हो सकती है, जो प्रभुपाद जिसमें समझा रहे हैं। इसका उदाहरण हम एक और आखिरी कथा सुना के इसका विराम देंगे। श्री चैतन्य महाप्रभु जब दक्षिण भारत की यात्रा पे थे, बहुत बार सुनी हमने ये कथा, एक बार और सुनते हैं कि एक ब्राह्मण वहां पे गए, मतलब ब्राह्मण परिवार रहते थे वहां, तो एक ब्राह्मण को देखा, वो भगवत गीता को उल्टा पकड़े हुए था, मतलब जैसे ऐसे हम पढ़ रहे हैं तो ऐसे था, ऐसे पकड़ा हुआ था उसने, और देख रहा था और रो रहा था, ये भगवत गीता है ये ऐसे, तो हम ऐसे पकड़ेंगे, वो ऐसे पकड़ रहा था, देख रहा था और रो रहा था, मतलब पढ़ने का प्रयास कर रहा था, फोटो भी नहीं देख रहे थे ऐसे। तो चैतन्य महाप्रभु ने पूछा, प्रभुपाद जी ने बहुत अच्छे से, एक क्लास में मैंने सुना, बहुत अच्छे से सुनाते हैं प्रभुपाद जी, एकदम से नम्र हो जाते हैं, उनकी आवाज एकदम से जैसे भाव में आ जाते हैं प्रभुपाद जी उस क्लास में। वो बच कहते हैं कि अरे चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि आप रो क्यों रहे हैं? तो कहते हैं कि मैं इसलिए, नहीं नहीं पहले उनसे पूछा कि ये ब्राह्मण हंस रहे हैं आप पर, आप और आप रो रहे हैं, ऐसा क्यों? तो वो ब्राह्मण बोलता है कि मेरे गुरु महाराज ने मुझे ये आज्ञा दी है कि मैं भगवत गीता पढूं, मुझे रोज हर प्रत्येक दिन भगवत गीता पढ़नी चाहिए। तो फिर तो आप रो क्यों रहे हैं? और आप वो ये ब्राह्मण इसलिए हंस रहे हैं क्योंकि मुझे पढ़ना नहीं आता, लेकिन मैं फिर भी प्रयास, तो फिर आप क्या कर रहे हैं? फिर भी मैं प्रयास कर रहा हूं, तो फिर आप रो क्यों रहे हैं? उसने कहा मैं इसलिए रो रहा हूं कि जब मैं ये देखता हूं कि भगवान अपने भक्त के सारथी बनने के लिए भी तैयार हैं, मतलब मान लीजिए आप यू आर ओनर एंड यू बिकम ए ड्राइवर ऑफ योर ड्राइवर, कि आप अपने मतलब मालिक हैं और अपने ड्राइवर के आप ड्राइवर बन जाते हैं, आपका ड्राइवर कहता है चलो इधर चलो, चलो उधर चलो, यहां रोको गाड़ी। तो जो भगवान जो सर्व कारण कारण है, जो परम शक्तिशाली हैं, वो अपने भक्त के सारथी बनने के लिए वे तैयार है, तो इससे दयावान व्यक्ति है और कौन होगा जिसकी शरण में मैं जाऊं? यही सोच के मुझे आंसू आ रहे हैं। तो भगवान कहते हैं आपका भगवत गीता पढ़ना सार्थक हुआ। तो ये होता है जब हम व्यवहारिक कार्यों में गुरु के निर्देशन में रहते हुए व्यवहारिक कार्यों में लगते हैं, तो जो भी सेवा कर रहे हैं वो सार्थक होगी, ये विश्वास होना चाहिए। कृष्ण भक्ति कैले सर्वकृत होए, ऐसा नहीं है कि ये बाद में रियलाइजेशन आएगा, आप सेवा करेंगे आपको रियलाइजेशन आएगा, वरना भक्ति में इतने लोग क्यों रुके रहते, क्यों वही सेम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, सेम उसी को बार बार रोज 16 माला कर रहे हैं, रोज मंगल आरती कर रहे हैं, कुछ तो 32 माला कोई 64 माला कर रहे हैं, क्योंकि व्यवहार जो अनुभव आता है, अनुभव होता है, राज विद्या राज गुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्ष वागमम, प्रत्यक्ष वागमम है, ये प्रत्यक्ष है आपके सामने आएगा, ये सभी भक्तों का अनुभव है। सुसुखम सुख देने वाली है, विशेष प्रकार का सुखम सुसुखम। तो हमारे आपसे यही प्रार्थना 9 बजने वाले हैं कि भक्ति की व्यवहारिक क्रियाओं में लगिए और समाधि की स्थिति को प्राप्त कीजिए। हरे कृष्णा।